सब अस्हाब नबी जन्नत में जाएंगे ए प्यारे बच्चों, हमारे सर के ताज प्यारे प्यारे बच्चों।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے ہیرو کے انٹروڈکشن کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے پروگرام کا نام ہے اور ہیروز آج ہم جس ہیرو پر بات کرنے لگے ہیں ان کے بارے میں آپ ڈیٹیل کے ساتھ تو جانیں گے لیکن اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ اتنے عظیم ہیرو ہیں کہ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پر 5 کتابیں لکھی ہیں۔ جی ہاں آج ہم بات کرنے لگے ہیں ہمارے ہسٹری کے ایک عظیم ہیرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ہمارے ہیرو حضرت امیر معاویہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایمان لا چکے تھے مگر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ پھر فتح مکہ والے دن جب آپ نے اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک کی خدمت میں حاضری دی تب آپ نے اپنا مسلمان ہونے کا اظہار کیا۔ ہمارے ہیرو حضرت امیر معاویہ پر یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا کہ آپ نے کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ نہ لیا، نہ آپ نے کبھی مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور نہ ہی انہیں تکلیف دی۔ پھر آپ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کی بہن ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل ابتدا ہی میں اسلام قبول کر چکی تھی اور انہوں نے تو حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی اور پھر بعد میں ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تھا۔ تو یوں آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد پرماننٹلی مدینہ آ گئے تھے، آپ حضور کی خدمت میں رہتے اور قرآن مجید کی کتابت یعنی اسے لکھا کرتے، یعنی ہم تک جو قرآن پاک لکھا ہوا پہنچا ہے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کردار ہے۔ نبی پاک نے آپ کو بہت ساری دعائیں بھی دی تھیں اور آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے اللہ حضرت معاویہ کو لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا اور انہیں ہدایت عطا فرما۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حمص کے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں ہٹا کر حضرت امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا۔ پھر بعد میں کسی نے حضرت عبد الرحمن کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کی تو انہوں نے اسے منع کیا اور اسے یہ حدیث پاک سنائی کہ حضور نے فرمایا اے اللہ انہیں یعنی حضرت معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا اور انہیں ہدایت عطا فرما۔ یعنی اتنے بڑے صحابی بھی حضرت امیر معاویہ کی شان و عظمت کو جانتے تھے۔ یہ تو تھا ہمارے آج کے ہیرو کا ایک شارٹ انٹروڈکشن۔ اب ہم حضرت امیر معاویہ کے ان کارناموں کے بارے میں جانتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ ہمارے اتنے عظیم ہیرو بن گئے۔ پیارے بچوں ہمارے ہیرو حضرت امیر معاویہ کی جو عظمت و شان تھی وہ ان کے بچپن ہی سے پتہ چلنا شروع ہو گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ہند بنت عتبہ کو مکہ مکرمہ میں دیکھا، ان کے پاس ایک بچہ کھیل رہا تھا تو وہاں سے ایک شخص گزرا تو وہ اس بچے کو دیکھ کر کہنے لگا اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنی قوم کے ہی نہیں بلکہ پورے عرب کے سردار بنے اور انہوں نے ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ عرب اینڈ نان عرب پر حکومت فرمائی۔ پیارے بچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان فوجی شام کی طرف بڑھے تو حضرت ابو سفیان کے بیٹے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ اس فوج کے آفیسرز میں سے تھے اور آپ نے وہاں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر نے حضرت امیر معاویہ کو گورنر شام کا نائب بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسی عہدے پر رکھا اور ہٹایا نہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حضرت امیر معاویہ کے بھائی جو گورنر شام تھے ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا۔ یعنی پیارے بچوں آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہیرو حضرت معاویہ کتنے قابل تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی انہیں ایک بڑی پوزیشن دی اور پھر حضرت عمر نے بھی انہیں ان کی پوزیشن پہ رہنے دیا اور ان کے بھائی کے انتقال کے بعد گورنر کی پوزیشن بھی انہیں ہی دے دی۔ حالانکہ تاریخ اسلام میں حضرت عمر کی پرسنالٹی کو سب جانتے ہیں کہ آپ کسی کی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے، کوئی گورنر غلطی کرتا تو اس کی پوزیشن سے اسے ہٹا دیتے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر نے ان کی پوزیشن سے ہٹایا نہیں بلکہ انہیں और बड़ी पोजीशन दे दी और गवर्नर बना दिया। इसका मतलब यह था कि हजरत अमीर मुआविया बहुत अच्छा निजाम चलाते थे। प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता चल गया कि हमारे आज के हीरो हजरत अमीर मुआविया, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जीनियस थे। उनकी अकलमंदी का एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ ले गए तो हजरत अमीर मुआविया ने आपका बहुत जबरदस्त अंदाज से वेलकम किया। हजरत उमर फारूक ने जब इतने इंतजाम देखे और इतने लोगों को देखा तो आप नाराज हो गए और आपने फरमाया कि इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी। तो हजरत अमीर मुआविया ने उसकी वजाहत करते हुए अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम जिस जगह रहते हैं यहाँ दुश्मन बहुत हैं और वो हमारी जासूसी करते रहते हैं, लिहाजा ये जरूरी था कि आपको बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम किया जाए ताकि दुश्मनों के दिल में आपका रोब बैठ जाए और वो आपसे डरे। देखा प्यारे बच्चों, आपने हजरत अमीर मुआविया ने किस तरह हिकमत अमली और अकलमंदी से दुश्मनों के दिल में इस्लामी खलीफा और मुसलमानों का रोब बिठा दिया। अमीर मुआविया हजरत उमर फारूक के दौर के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के दौर में भी शाम के गवर्नर रहे और फिर इमाम हसन रदी अल्लाह तआला के जमाने में इमाम हसन रदी अल्लाह तआला ने आपको खिलाफत दे दी और फिर आप पूरी इस्लामी दुनिया के बादशाह और खलीफा बन गए और आपने टोटल 40 साल तक हुकूमत फरमाई। अब आपको हमारे आज के हीरो हजरत अमीर मुआविया की बहादुरी के बारे में बताते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में आपने मुनकरीन ज़कात, मुनकरीन खत्म नबूवत के खिलाफ जिहाद फरमाया। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो ममालिक फतह हुए उनमें हजरत अमीर मुआविया का एक बहुत बड़ा किरदार था और फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तो आपने रोमियों को बहुत सारी जंगों में हरा कर शाम, उमूरिया, अंताकिया और दीगर इलाकों को फतह फरमा कर इस्लामी हुकूमत में शामिल फरमाया और फिर आपने अपनी खिलाफत के 20 सालों में इस्लामी सल्तनत को किस कदर बड़ा कर दिया था कि खुरासान यानी एशिया से लेकर अफ्रीका के शहरों तक फतह फरमा लिया और दूसरी तरफ कुब्रुस से लेकर यमन तक के इलाकों को आपने हुकूमत में शामिल फरमा लिया था। सबसे पहले आपने कुब्रुस फतह फरमाया, फिर रोम के कुछ इलाकों को फतह किया, उसके बाद सूडान, काबुल, लीबिया, अलजजायर, बुखारा और समरकंद तक फतह फरमा लिया और इन शहरों और ममालिक को आपने सिर्फ फतह नहीं फरमाया बल्कि आप चूंकि खलीफा थे इसलिए इसकी मुकम्मल मैनेजमेंट भी आप ही चलाते थे और इन तमाम इलाकों की मैनेजमेंट ऐसी थी कि जिसकी मिसाल दूसरे इलाकों में नहीं मिलती, यानी जहां आपकी हुकूमत होती वहां बगावतें नहीं होती थी और आवाम भी बहुत खुश रहती थी। हमारे हीरो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की इन्हीं खूबियों की वजह से उन्हें एक बेहतरीन बादशाह कहा जाता है। मौला अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम तो आपकी हुकूमत की तारीफ करते हुए यहाँ तक फरमाया कि मुआविया की हुकूमत को नापसंद ना करो क्योंकि अगर वो तुम में ना रहे तो तुम सरों को कंधों से ऐसे गिरते हुए देखोगे जैसे फल गिरते हैं, यानी तुम अपने दुश्मन के सामने नहीं ठहर सकोगे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अब आइए हम हमारे आज के हीरो हजरत अमीर मुआविया की कुछ इन्वेंशंस पर भी बात करते हैं। हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम की पहली बहरी फौज यानी नेवी फोर्स तैयार की जिसके जरिए आपने मेडिटेरियन सी यानी बहीरा रूम पर कैसर बादशाह के कब्जे को खत्म कर दिया। आपने बहीरा रूम के साहिलों पर जहाज साजी की एक जबरदस्त इंडस्ट्री कायम की और कुछ ही सालों में मुसलमानों ने 1700 जंगी जहाज बना लिए और इससे दुनिया के अहम तरीन समंदरों पर मुसलमानों के गलबे का आगाज हुआ और मुसलमान 1100 सालों तक समंदरों के इन एरियाज पर हुकूमत करते रहे। आपने जजीरा साइप्रस, रोड्स और बाद में सिसली को भी फतह कर लिया जो मौजूदा इटली का अहम तरीन हिस्सा है। इसी तरह यूरोप में मुसलमानों के कदम पहली मरतबा हजरत अमीर मुआविया ही के जरिए पहुंचे थे। प्यारे बच्चों, हमारे हीरो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ जंगी प्लानिंग में ही माहिर ना थे बल्कि मैनेजमेंट के हवाले से भी आपकी स्किल्स बहुत अच्छी थी। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में एक शहर से दूसरे शहर को जो खत वगैरह पहुँचाने का एक सिस्टम बनाया था उसे अमीर मुआविया ने अपने ज़माने में बहुत तरक्की दे दी। यूँ समझ लीजिए कि ये उस दौर का एक कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन था। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह की है कि हजरत अमीर मुआविया ने हर 12 माइल्स के फासले पर शहरों के दरमियान डाक की चौकियों की एक नेटवर्क बना दिया और हर चौकी यानी हर पॉइंट पर एक तेज रफ्तार घोड़ा एनी टाइम मौजूद होता। अब होता कुछ यूं कि एक पोस्टमैन तेज रफ्तार वाले घोड़े पर खत लेकर दौड़ता और घोड़े पर एक घंटी लगी होती थी जो उसके दौड़ने से बचती थी। इसकी आवाज सुनकर लोग घोड़े को रास्ता दे देते और इसी की आवाज सुनकर अगली चौकी यानी नेक्स्ट पॉइंट का पोस्टमैन तैयार रहता। जैसे ही पहला पोस्टमैन वहां पहुंचता तो अगला पोस्टमैन उससे खत लेकर घोड़े को दौड़ा देता। यही सिलसिला तीसरी, चौथी और अगले पॉइंट्स पर भी जारी रहता। इसी तरह बहुत कम वक्त में एक शहर से पैगाम दूसरे शहर तक पहुंच जाते। फिर डाक ही से रिलेटेड एक और डिपार्टमेंट की इन्वेंशन भी हजरत अमीर मुआविया का कारनामा है, और वो था लेटर्स के लिए स्टैम्प तैयार करना और उन पर लगाने का काम। इसकी बदौलत हजरत अमीर मुआविया ने फेक डॉक्यूमेंटेशन का रास्ता रोक दिया था। अब आपको कुछ इनकलाबी कारनामे भी इनके बताते हैं अपने हीरो के। आपके हुक्म से तारीख की पहली किताब किताबुल मुलूक व अखबारुल माजीन लिखी गई। 28 हिजरी में इस्लाम की सबसे पहली बहरी फौज की क़यादत फरमाई और कुब्रुस को फतह किया। बहरी जहाज बनाने के लिए 49 हिजरी में कारखाने कायम फरमाए और साहिल पर ही तमाम कारीगरों की रिहाइश वगैरह का इंतज़ाम कर दिया ताकि बहरी जहाज बनाने के अहम काम में खलल वाके ना हो। मक्तूबात पर मोहर लगाने का तरीका राइज फरमाया, जिसका सबब यह बना कि आपने एक शख्स के लिए बैतुल माल से 1,00,000 दिरहम देने का हुक्म तहरीर फरमाया, लेकिन उसने तसर्रुफ करके 1,00,000 कर दिया। आपको जब इस खयानत का इल्म हुआ तो उसका मुहासबा फरमाया और उसके बाद खतूत पर मोहर लगाने का निज़ाम नाफिज फरमा दिया। सरकारी खतूत की नकल महफूज रखने का निज़ाम भी बनाया और सबसे पहले खाना काबा पर रेशम का कीमती गिलाफ चढ़ाया और खिदमत के लिए मुतअद्दिद गुलाम मुकर्रर किए। अवाम की खैरखाही के लिए शाम और रोम के दरमियान में वाके एक मरअश नामी गैर आबाद इलाके में फौजी छावनी कायम फरमाई। नए आबाद होने वाले इलाकों में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनका इंतज़ाम फरमाया। मसलन लोगों को पानी फराहम करने के लिए नहरी निज़ाम कायम फरमाया। रियाया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महकमा बनाया, जिसके तहत हर इलाके में एक अफसर मुकर्रर था ताकि वो लोगों की मामूली ज़रूरतें खुद पूरी करे और बड़ी ज़रूरतों से आप रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को आगाह करे। नीज़ उनको किसी भी घर में आने वाले मेहमान या बच्चे की विलादत के बारे में मालूमात रखने का हुक्म दिया ताकि उनके वज़ाइफ की तरकीब बना सके। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारी हिस्ट्री के ये अजीम हीरो, कातिब वही और जलीलुल कदर सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी में 78 ईयर्स की उम्र में इंतकाल फरमाया। तो ये थे हमारे आज के हीरो। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। हमारी इस एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक और सजेशन भी दे सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमने जो कुछ सुना उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए और हमें हमारे हीरोज़ के नक्श कदम पर चलने वाला बनाए और इसकी तौफीक और ताकत नसीब करें। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
सब अस्हाब नबी जन्नत में जाएंगे ए प्यारे बच्चों, मेरे पे हमारे सर के ताज प्यारे प्यारे बच्चों। गौसे रज़ा के हम है खादिम, वो है हमारे प्यारे बच्चों।